ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी मधुबन में वे बेहद के घर में बैठे इस समय का सर्वश्रेष्ठ स्थान ना, पूरे संपूर्ण विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान उस जगह पर हम बैठे। कई जगह देखते हैं ना, कोई महात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, तो अपने जीवन काल में एक हाथ चक्कर जिस जगह पे लगाते हैं उस जगह पर मंदिर बन जाता है ना। वो देवियों का भी गायन है, शक्तिपीठों का गायन है, कुछ एक अवयव, कुछ एक अंग वहां गिरा, ऐसे गायन है, तो शक्तिपीठ कहलाता है। वहां से कितनों को शक्तियां मिलती है, और हम तो कहां बैठे हैं, जहां शक्तियों का स्रोत सर्वशक्तिवान बाबा स्वयं आकर, स्वयं इस साकार दुनिया में आकर कितनी आत्माओं को शक्ति दिया, उस स्थान पर हम बैठे। अनुभव होता है ना सभी को, सेवादारियों को भी होता होगा, भट्टी में आए हुए उनको भी होता होगा। पांडव भवन का अपना एक अलग ही स्थान है, अलग ही मजा है, अलग ही शक्ति है। यहां हमारी सारी दादियां यही रहकर कर्मयोगी बनकर तपस्या की और सभी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुई, तो ऐसा स्थान है। इस स्थान में रहने का भी एक भाग्य है, संगम युग का भी भाग्य है। संगम युग में भी कितनी आत्माएं तड़पती होगी कि ऐसे स्थान पर जाने को मिले, है ना। लेकिन हमें बाबा ने चांस दिया है, तो हम कितने भाग्यवान हैं। अगर हम अपने भाग्य को लिखते रहेंगे तो रोज कितनी डायरियां भर जाएगी, रोज बाबा कितना भाग्य बांटता ही रहता है। आज के बाबा के मुरली में प्रश्न क्या था सुनाएगा? आज के बाबा के मुरली का प्रश्न ड्रामा का यथार्थ ज्ञान जिसको है वो कौन सा प्रश्न नहीं कर सकता है? ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता, वैसा होता तो अच्छा हो जाता है ना। तो ये सारे प्रश्न ड्रामा के यथार्थ ज्ञान वाले को नहीं होगा। यथार्थ ज्ञान किसको कहेंगे? सबको पता है ड्रामा का ज्ञान, लेकिन यथार्थ ज्ञान किसको कहेंगे, जिसको प्रश्न ही नहीं आएगा ये ड्रामा को गहराई से समझ लिया है। ड्रामा को गहराई से समझ लिया मतलब क्या एक्सेप्ट कर लिया है। देखो कितनी सारी सीन्स आजकल हम देख रहे हैं ना, तो कितने सारे प्रश्न भी उठते हैं हर एक के मन में। अब ये भी जो घटना हुई, जो एरोप्लेन क्रैश हो गया, तो कितने सारे प्रश्न उठ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, शायद ये होता है, शायद 10 सेकंड जिन लेट होता या पहले होता तो कुछ अलग होता, बहुत कुछ चीजें कहते। इसके लिए भी बाबा ने ड्रामा का सुंदर नॉलेज दिया है। और विशेष बात तो ये है ना, अभी 2025 को अगर आप देखेंगे, 2025 हमको कितनी चीजें सिखा के गया, जो कुछ भी होगा अचानक होगा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम खुद को सुरक्षित महसूस कर पाए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम अपने आप को निश्चिंत कर पाए। आज तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके पहले ट्रेन का हुआ था, उसके पहले घूमने गए थे वहां हो गया, वहां भी कितने अचानक चले गए, कितने एक सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट की बात होती है, उसमें सब कुछ घटनाएं घटित हो गई। पहलगाम वाला तो अचानक तो सारे एंजॉय कर रहे थे ना, घूम रहे थे, उस समय चले गए। कोई तो ऐसे है शादी के बाद घूमने निकल गए, वहां से हो गया है ना। एक दूसरे के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते, ऐसी समाज हो गया। कोई तो अपने घरों में भी चले जाते हैं, बैठे बैठे चले जाते हैं, आजकल तो कितना पता चलता है। तो समय का कोई भी भरोसा नहीं, किस समय कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय अपनी अंतिम घड़ी आ सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिस आत्मा को, जिस बच्चे को ड्रामा का यथार्थ ज्ञान है, उसको भी प्रश्न नहीं आएगा। ड्रामा का यथार्थ ज्ञान, ड्रामा कैसा है? ड्रामा कल्याणकारी है और कैसा है? एक्यूरेट है। देखो, ड्रामा कल्याणकारी ना, हर बात में कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। एक्यूरेट है, एक्यूरेट है मतलब ड्रामा में घटित हुई हर एक घटना एक्यूरेट है, हर एक आत्मा का पार्ट भी एक्यूरेट है। हम ये नहीं कह सकते कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, क्योंकि उसको पार्ट मिला है। कोई हम मूवी देखते हैं ना, मूवी में हर एक के पार्ट्स होते हैं, हीरो का पार्ट होता है, विलन का पार्ट होता है, कॉमेडियन का पार्ट होता है, हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले करता है। वैसे ड्रामा में भी हर किसी का पार्ट है और प्ले कर रहा है, तो उसको वही पार्ट मिला तो वैसे प्ले करेगा ना। तो एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हर किसी का कल्याण। और दूसरा हुबहू रिपीट होता है, हुबहू रिपीट होता है ड्रामा। जब हुबहू रिपीट होता है तो उसमें संकल्प चलाने की मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि ये पहले भी घटित हुआ है, अगले कल्प में फिर से घटित होगा, तो उसमें संकल्प चलाने की मार्जिन ही नहीं। और ड्रामा न्यायपूर्ण है, ड्रामा का एक एक सीन, एक एक रिलेशन, एक एक कनेक्शन न्यायोचित है ना। बाबा ने इतना सुंदर तरीके से कर्म, अकर्म, विकर्म की व्याख्या दी है, उसी के आधार से सभी संबंध बनते हैं, उसी के आधार से सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती रहती है, तो कहीं भी अन्याय नहीं होता है। हमारी आंखों से, हमारी अभी वर्तमान में देखने की प्रवृत्ति से लगता है कभी कभी कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन एक घटना के पीछे, हर एक व्यक्ति के पीछे, हर एक संबंधों के पीछे उचित न्याय है, उसको हम डिनाय नहीं कर सकते, न्यायपूर्ण है। ये बुद्धि में जिसके रहेगा ना, उसको किसी चीज का डाउट नहीं आएगा। और क्या है? ड्रामा नथिंग न्यू हुआ ना, वो रिपीट होता है, बना बनाया है। और एक चीज भूल रहे हैं, रचयिता नहीं है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है, जू मिसल चलता है। शिव बाबा को प्रिय है। अरे सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये अविनाशी ड्रामा में मुझ आत्मा को हीरो का पार्ट मिला हुआ है। तो हीरो का पार्ट क्या होता है? जो हीरो होता है ना, तो हीरो के आधार से सारी मूवी बनती है। तो मैं जैसे पार्ट प्ले करूंगा वैसे ही, बाबा कहते हैं ना कि हम भी मास्टर विधाता है, तो हमारे एक एक कर्मों से विधान बन जाएंगे। तो हीरो होता है ना, जैसे हंसता है वैसे सारी दुनिया हंसती है, जैसे वो रोता है वैसे सारी दुनिया रोती है। कई जगह पे तो ऐसे होता है ना, कई जैसे उसकी डेथ होती है ना लास्ट में, तो सभी लोग सोचते कि शायद मेरी भी काश ऐसी डेथ हो जाए ना, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो हर एक एक्शन को लोग कॉपी करने की कोशिश करते। तो इतना श्रेष्ठ ड्रामा, अविनाशी ड्रामा, और उस ड्रामा में मेरा पार्ट भी हीरो पार्ट धरिए। तो ये यथार्थ नॉलेज अगर किसी को है तो उसको प्रश्न आ सकता है क्या? प्रश्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज फिक्स है, हर चीज फिक्स है और कल्याणकारी है। ड्रामा पॉजिटिव है, हर बात में पॉजिटिव है, हर घटना पॉजिटिव ही उसमें लिखी गई है ड्रामा में। ड्रामा का सबसे बड़ा एक हमारे लिए फायदा भी है, और एक नॉलेज होने के कारण हम हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं ना। अभी ये जो घटना हुई उसमें आपने कई सारे घटनाएं सुनी होगी, ये जो प्लेन वाली, उसमें एक लड़की की न्यूज आई, वो घर से निकली, ट्रैफिक में फंस गई, तो एयरपोर्ट पे पहुंची तो CISF होता है ना, सिक्योरिटी पर्सनल, उसने उसको रोक दिया, उसको अंदर जाने ही नहीं दिया, 15 मिनट लेट हो गई थी इसलिए। तो उस समय तो उसको बड़ा बुरा लगा, उसने बहुत गाली गलौज भी किया, हंगामा भी किया वहां, और बाद में घर जाने के बाद पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया। तो बाद में भगवान को थैंक्स दे रही है ना? तो जो भी हर एक घटना होती है कुछ ना कुछ उसमें राज समाया होता है। तो बाबा ने देखो कितना प्यारा हमको नॉलेज दे दिया ड्रामा का, जिसके कारण हम कोई भी कुछ भी घटना हो जाए उसमें हमें संशय नहीं आ सकता है। और यही ज्ञानीतु आत्मा की निशानी है, यही ज्ञानीतु आत्मा की निशानी है कि कुछ भी हो जाए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, परिस्थिति को ऊपर ही फोकस करते हैं, लेकिन फोकस क्या होना चाहिए, स्वस्थिति के ऊपर फोकस हो। हमारी दादियों ने कभी भी परिस्थिति शब्द नहीं कहा है ना, बहनें जानती होगी, कुछ भी हो जाए दादी परिस्थिति आ गई ऐसे नहीं कहती थी, दादी कहती थी कि परीक्षा आ गई। तो परीक्षा आती है तो उसमें किस लिए आती है, हमको बेटर करने के लिए। जो बच्चे होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो परीक्षा का तो वेट करते हैं कब परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो जाए, क्योंकि उनको पता है जब परीक्षा आएगी तभी तो हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। देखो बाबा ने कितना प्यारा हमारा ब्राह्मण जीवन भी बना दिया है ना, कि चाहे किसकी कितनी भी उम्र हो फिर से सबको स्टूडेंट बना दिया, बच्चे बना दिया। कहते हैं कि साइकिल पीछे नहीं घूमता, एक बार समय निकल जाता है ना वापिस नहीं आता है, लेकिन बाबा ने हमें फिर से वो बचपन में लेके गए, वो स्टूडेंट लाइफ में लेके गए। तो स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, एंजॉय भी करते हैं लेकिन साथ साथ पूरा जोर लगाते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, पूरा जोर लगाते हैं। और परीक्षा भी कैसी, कब आए पता नहीं, पेपर सबको पता है कौन कौन से आएंगे लेकिन कब आए पता नहीं। जैसे कहा ना वो 3000 घंटे का उसको अनुभव था, लेकिन जो एक सेकंड उसको उसमें कुछ हो गया तो खत्म हो गया सब कुछ। तो ऐसे ही आता है, हमारे पास भी परिस्थिति परीक्षा के रूप में जब आएगी उस समय हमारी स्वस्थिति कैसे होगी उसके ऊपर डिपेंड है कि हम कितना पास भी दानोर होते हैं या केवल पास होते हैं या फेल हो जाते हैं। जब संगम युग में इतना श्रेष्ठ भाग्य मिला है, खास करके पांडव वन में भी आप सब बैठे हो, बाबा ने सही समय पर हम सबको चुन लिया है, तो उस समय भी अगर हम पास और फेल में लगे रहेंगे तो हमारे ब्राह्मण जीवन, बाबा ने इतना वरद हस्त रखा उसका भी हम गंवाने के निमित्त बन जाएंगे। पासवी दानर तब बनेंगे जब हम परीक्षा के लिए एक्यूरेट रहेंगे, तैयार होके रहेंगे। बच्चे ये नहीं सोचते कि परीक्षा स्कीप हो जाए ना, पेपर स्कीप हो जाए, स्कीप होने के बाद क्या होता है, उनका साल बर्बाद हो जाता है, साल बर्बाद हो जाता है, नेक्स्ट ये क्लास में जाता ही नहीं। लेकिन उसके लिए तरीका क्या अपनाते हैं कि जितना बड़ी परीक्षा उतना ज्यादा एफर्ट, उतनी ज्यादा अभ्यास, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस, तब उसमें से पास होने का उनको रास्ता मिल जाता है, और अच्छे नंबर से पास होते हैं तो फिर सब जगह वाहवाही मिलती है। तो हमारा ब्राह्मण जीवन भी ऐसा ही है, इसलिए दादियां हमेशा परीक्षा कहती थी कि परीक्षा आ गई और परीक्षा में सब पास हो गए। तो हम दादियों के भूमि पर, कर्म भूमि पर बैठे हैं ना, तो यहां से जाने के बाद भी चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमारी स्वस्थिति बिल्कुल भी हिले नहीं। उसके लिए ड्रामा का राज सबको बुद्धि में है कि कैसे ड्रामा को यूज करना है, ड्रामा को यथार्थ ज्ञान उसको कहेंगे ना, सही समय पे सही जगह पे सही तरीके से यूज करना, उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे। और ऐसा यथार्थ ज्ञान यूज करना जिसको आ गया वो हमेशा खुश रहेगा। तो ऐसी परीक्षा में पास होने के लिए अंतिम समय बहुत सारे, अभी तो एक दो पेपर हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी, चीजें आएगी जो हमें उसमें से पास भी दानोर होकर निकलना है। जब हम दादियों के साथ चिट चैट करते थे, बातचीत करते थे, तो दादियां हमेशा एक चीज हमेशा कहती थी, हम पूछते थे कि दादी जी 14 साल तक आप लोगों को बाबा ने भट्टिया कराई, तपस्या कराई, तो उस समय खास क्या आपको अभ्यास कराया। तो रत्नमयी दादी खास करके कहती थी कि बाबा हमेशा हमको कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास कराते, कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए कंबाइंड होके रहो, कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास जिसको आ गया, कंबाइंड रहना आ गया, वो हमेशा निश्चिंत रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। तो कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास कैसे करेंगे, आपने करण करावन हार शब्द सुना होगा बार बार, है ना। हम लोग यूज भी करते हैं लेकिन केवल बोलने के लिए यूज करते हैं। कंबाइंड स्वरूप मतलब हर कर्म करते समय ये स्मृति में रहे कि कराने वाला कौन है, कराने वाला कौन है। जैसे हम ब्राह्मण बने या मधुबन में आए, किसके प्लान से आए? बाबा के प्लान से ना। तो हमारे जो कर्मों को सबसे ऊपर रखने का तरीका यह है कि सबसे ऊंचे स्तर पे उसको जोड़ दीजिए। गॉड्स प्लान क्या है? गॉड्स प्लान के कारण, बाबा के प्लान के कारण हम यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद आता है ड्रामा का प्लान। ड्रामा में जो हमारा पार्ट फिक्स है तो वो ड्रामा का प्लान है। और तीसरे नंबर पे आता है कि हमारा खुद का प्लान, स्व का प्लान। तो हमारा स्व का प्लान, जो पुरुषार्थ का प्लान हम ऐसे सेट करें जो ड्रामा के जो हमको रोल मिला है उसको फिट हो जाए, लेकिन वो रोल भगवान के कार्य में यूज हो जाए। दादियों ने यही किया ना, सभी सामान्य थे लेकिन बाबा ने उनको चुन लिया। लेकिन अपने आप को जो रोल मिला, जिस भी दादी को जो रोल मिला वो रोल एक्सेप्ट किया और अपने रोल को उस रोल के हिसाब से सेट कर दिया। और केवल सेट नहीं किया तो बाबा के कार्य में, ईश्वरी कार्य में, बाबा ने कहां कहां भेज दिया? अकेले अकेले दादियों को भेज दिया, वहां सेवा करने जाओ, वहां सेवा करने जाओ। जब बस भगवान ने भेज दिया, बाबा ने भेज दिया, बस उस निश्चय के आधार से, विश्वास के आधार से सेवाएं शुरू कर दी। तो उनकी मेहनत, उनका विश्वास, उनका त्याग, आज हम उसका मक्खन खा रहे हैं ना। आराम से बैठे हैं, आराम से इतनी सेवाएं हो रही है, लेकिन उस समय कितना इन महान आत्माओं ने तपस्या किया, त्याग किया। तो अपने प्लान को ड्रामा के प्लान के आधार से बनाया और वो ड्रामा का प्लान भी अपना जो खुद का रोल ईश्वरीय सेवा के लिए रोक दिया। तो भगवान की मर्जी से हम आए हैं, भगवान की मर्जी से हम इस महायज्ञ में चुने गए हैं। तो जब हम चुने गए हैं तो हमें अपने आप को भी भगवान के साथ हमेशा कंबाइंड बना के रखना चाहिए। करण करावन हार उसको कहेंगे ना कि हर कार्य में बाबा मेरे साथ है। आपने दादा विश्वरतन जी को सुना है नाम कभी? दादा विश्वरतन जी थे तो देखो पूरा अकाउंट का कारोबार संभालते थे, और उस समय तो इतना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ नहीं था, तो कितना सारा चीजें हाथ से लिखना, फिर उसको टैली करना वगैरह, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन हम लोग देखते थे दादा हमेशा एकदम जैसे एकदम निश्चिंत, जैसे ब्रह्मा बाबा से, जैसे शॉल भी वैसे ही ओढ़ेंगे और जैसे लगेगा कि बाबा ही चल रहे परिस्ता जैसे। तो कई बार हम दादा को पूछते थे, दादा आप क्या पुरुषार्थ करते हो? कई बार पूछते थे, लेकिन एक ही जवाब दादा की तरफ से आ रहा था कि मैं एक ही पुरुषार्थ करता हूं, बस बाबा मेरे बाजू में बैठा है। तो हमको थोड़ा सा नए नए थे तो हमको थोड़ा लगता था कि बाबा बाजू में बैठा, इसी से आपकी स्थिति ऐसी रहती है? तो दादा बहुत सुंदर तरीके से जवाब देते थे। दादा कहते थे कि देखो बाबा को 24 घंटा मेरे बाजू में बिठा के रखता हूं, उससे दो चीजें होती है। एक तो मुझे जब भी कुछ मुश्किलात आएगी, जब भी कुछ ऐसे लगेगा कि अभी क्या करना चाहिए, तो मेरे बाजू में बाबा बैठा है, वो तो हमेशा सहयोग करेगा, हमेशा शक्ति भी देगा, संभाल भी लेगा। और दूसरा, अगर मेरे मन में कुछ भी थोड़ा सा व्यर्थ भी कहो या थोड़ा सा कमजोर संकल्प आ गया, तो भी मुझे लगता है कि बाबा मेरे बाजू में बैठा है, तो मैं जो सोच रहा हूं ना, तो बाबा को तो पता ही चल रहा है, तो तुरंत वो अटेंशन रहता था। तो देखो एक छोटी सी चीज ना, बाबा मेरे बाजू में बैठा है, छोटा सा एक चीज अपने जीवन में जोड़ दिया, कंबाइंड हो गए उस संकल्प के साथ भी कंबाइंड हो गए, तो उसके बाद में उस आत्मा की कितनी अच्छी स्टेज, कितनी अच्छी स्थिति बन गई। तो हम भी ऐसे ही बाबा को हमारे साथ कंबाइंड कर ले, हर बात में कंबाइंड, खाते पीते बोलते हर समय बाबा हमारे हमेशा साथ रहे। कर्मयोगी कहते हैं ना, कर्मयोगी मतलब कर्म और योग दोनों साथ साथ, कर्म छोड़ के भी योग नहीं है और योग छोड़ के भी कर्म नहीं है, कर्म योग, शिव शक्ति, शिव और शक्ति हमेशा साथ। विष्णु का देते हैं ना कंबाइंड स्वरूप के लिए, विष्णु का चित्र हमेशा देते हैं सामने, लेकिन विष्णु मतलब ऐसे नहीं है कि नर और नारी का कंबाइंड स्वरूप, गुलजार दादी जी ने व्याख्या बताई थी विष्णु की कंबाइंड स्वरूप की, क्या हो सकती है। हम तो यही समझते हैं नॉर्मली, नर और नारी मनो विष्णु। दादी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया था, कंबाइंड स्वरूप मतलब हमारा कर्म भगवान के साथ जुड़ा हो। तो विष्णु दिखाते हैं ना, विष्णु में जो चार अलंकार दिखाते हैं, शंख गदा कमल और चक्र, तो हमेशा चारों अलंकार हमारे हमेशा साथ में रहे, उसको कहेंगे कंबाइंड स्वरूप। नर और नारी का तो एक सामने प्रेजेंट करने के लिए कि नर को भी ऐसे रहना, नारी को भी ऐसे रहना, लेकिन कंबाइंड स्वरूप उसको है चारों जो अलंकार है वो हमेशा हर पल 24 घंटा हमारे हर कर्म में हम साथ में रखें, उसको कहेंगे कंबाइंड स्वरूप। और ऐसा अगर हम बनने जाए, कोशिश करेंगे, बनेंगे, तो हम हमेशा बाबा के साथ रहेंगे। और जब ऐसा कंबाइंड स्वरूप हमारा अपना होगा तो उसके बाद में कोई भी समस्या आए, कोई भी परिस्थिति आए, तो उसका असर हमारे पे नहीं होगा। लेकिन उसके लिए जैसे कहा ना कि कितने भी सालों का अनुभव हो, लेकिन फेलियर के लिए एक पल काफी होता है। तो ये जो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है, ये कितनी भी स्ट्रांग हमने अभ्यास किया हो, लेकिन अंतिम समय जब पेपर आने वाला है उस समय हमारी स्थिति क्या रहती है उसके आधार से रिजल्ट है, और उसके लिए हमारा सारा पुरुषार्थ है। तो कई बार सोचते हैं कि ये तो बातें अच्छी है, कंबाइंड स्वरूप रहना चाहिए, लेकिन कैसे रहे। जब भट्टी में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, उस समय तो स्मृति आती है ना, उस समय तो हम पूरे पांचों स्वरूपों का अभ्यास भी करते हैं, अच्छी तरह से अनुभव भी करते हैं। लेकिन जब कार्यस्थल में चलते हैं, अपने कार्य व्यवहार में आते हैं, तो कुछ न कुछ कारण बन जाता है, परिस्थिति बन जाती है, जो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। होता है ना ऐसे, पांचों स्वरूप का अभ्यास हमेशा तो नहीं करते, योग में बैठते उस समय करते हैं। लेकिन अगर हम हमारे हर कार्य करते समय पांचों स्वरूप लाए, हमारा एक बार यूथ विंग का कुमारों का रिट्रीट चल रहा था, तो उस समय बहुत सारे कुमार आए थे, तो जब कुमारों को पांच स्वरूप का अभ्यास कराया गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा, तो उनको अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने फिर यही सवाल किया कि यहाँ तो अच्छा लगता है, यहाँ तो शक्ति का अनुभव भी होता है, लेकिन जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में तो अपना कारोबार चलता है, तो वहां तो सब कुछ भूल जाता है, तो वहां क्या करें। फिर उनको वहां अभ्यास कराया हमने कि आपके एक एक कर्म, जैसे हम घर में बैठे हैं, घर में परिवार के साथ है, तो जब परिवार के साथ है उस समय एक मिनट में पूरे पांचों स्वरूप का अभ्यास कि इनके साथ मुझे व्यवहार में आना है तो पांचों स्वरूप से कैसे आऊंगा, देवता स्वरूप से कैसे आऊंगा, पूज्य स्वरूप से कैसे आऊंगा, फिर आत्मिक स्वरूप से कैसे आऊंगा, परिस्था स्वरूप से कैसे आऊंगा, ब्राह्मण स्वरूप से इनसे कैसे व्यवहार करूंगा। जब ट्रेवल कर रहे हैं, गाड़ी में हैं, उस समय पांच स्वरूप का अभ्यास, ऑफिस में है, कार्य व्यवहार कर रहे हैं, उस समय पांच स्वरूप का अभ्यास। तो इस तरह से अगर हम अभ्यास अपने कर्मों के साथ अटैच कर देंगे ना, कंबाइंड कर देंगे, तो अभ्यास हमारा स्थायी बन जाएगा। फिर आप सोचिए, जिस आत्मा को इतना प्रैक्टिस हो गई है कि एक सेकंड में वो जो चाहे अभ्यास कर लेता है, कैसी भी परिस्थिति हो, उसके सामने कितनी भी विकराल परिस्थिति आ जाए, कोई गन लेके खड़ा हो जाए सामने, गन लेके सामने खड़ा है और हम मस्त फरिश्ता बन गए, हमारे पर असर होगा कुछ, हमारे पे कुछ भी असर नहीं होगा, सामने वाले पे जो होगा उस पे असर होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि हमारी अपनी स्वस्थिति का प्रभाव दूसरों पे पड़ता है। कितनी सारी घटनाएं ऐसी हुई है, कितनी सारी चीजें ऐसी होती है जो सारी परिस्थितियां विकराल हो जाती है, सारी परिस्थितियां बिगड़ जाती है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अपने बाबा के बच्चे सेफ हो जाते। एक छोटा सा अनुभव आपके सामने शेयर करता हूं। कोरोना पीरियड चल रहा था ना, तो कोरोना में आपने देखा कि सबको बड़ी मतलब तकलीफें हुई, कई लोगों को बहुत तकलीफ हुई और सैकड़ों लोग एक साथ एडमिट हुए थे। तो यहाँ भी हमारे मधुबन के एक भाई पुराने, काफी एज थी उनकी, तो उनको भी कोविड हो गया, तो यहाँ से अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में उनको लेके गए। और वहां तो ऐसे ना रिश्तेदारों को उस समय साथ में नहीं आने देते थे, तो सिविल हॉस्पिटल में जब वो थे तो उस समय उन्होंने देखा कि उनके पास में कितने सारे पेशेंट्स, कोविड पेशेंट्स एडमिट थे, लगभग 150 जितने वो वार्ड में थे। और वो कहते हैं वो लगभग वहां 30 दिन रहे, 28 दिन ऐसे कुछ रहे, तो उन दिनों में उनके आंखों के सामने 60 से ज्यादा लोगों ने शरीर छोड़ा उसी वार्ड में। आने के बाद वो अनुभव सुना रहे थे कि कोई तो ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई अपने परिवार वालों को याद करता था, कोई कहता था कि केवल फोन पे बात करा दो, लेकिन परिवार वाले उसमें फोन पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। तो ऐसी ऐसी हालत थी, वो सारा उन्होंने देखा हुआ, उनकी भी एज काफी थी। तो हमने उनको पूछा कि इतना सारा देखा तो आपको उसका असर नहीं आया, आपको अंदर से डर नहीं लगा? तो उन्होंने वो कहा, उन्होंने उस समय बताया कि मैं जब देख रहा था ना, शुरुआत में तो लगा अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन तुरंत फिर याद आ गए बाबा के महावाक्य कि ऐसा अंतिम समय आएगा कि आपके चारों तरफ हाहाकार मचेगा, लोग चिल्लाएंगे, चीखेंगे, और उस समय आपको सकाश देने की सेवा उन आत्माओं को करनी है, उन आत्माओं को बल भरने की सेवा करनी है। तो जैसे याद आ गया तो फिर बस मैं तो वहां बैठे बैठे जो भी होगा वो भी उसके रिश्तेदारों को भी वहां से बल देने की, सकाश देने की सेवा करने लग गया। तो देखो उसको आत्मा को प्रैक्टिस थी ना, तो प्रैक्टिस थी इसलिए ऐसे समय में भी वो सेवा करने का साधन बना लिया, जब खुद एडमिट है लेकिन सेवा करने का साधन बना लिया। तो यही हमारी ब्राह्मण आत्माओं की एक गिफ्ट भी है हमको और हमारी कमाल भी है, हीरो पाटदारी। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना कि चाहे कैसे भी हो, जब हम अपनी स्वस्थिति में आ जाते हैं तो फिर हर परिस्थिति को सेवा का साधन बना लेते हैं। और बाबा ने हमको चुना ही तो सेवा के लिए, खुद के लिए तो नहीं चुना है, विश्व की सेवा के लिए चुना है। जब विश्व की सेवा करनी है तो सबसे पहले खुद को सक्षम बनाना पड़ेगा। जैसे कहा ना, परीक्षा आएगी तो परीक्षा पेपर स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हमें स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ेगी। और ये भट्टी या मधुबन रहने का चांस, उसके लिए एक बहुत बड़ा एक बेनिफिट है कैटलिस्ट, जिसको कहते हैं कैटलिस्ट, पता है जो केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उसमें ऐसा एक चीज होती है जो उस जो प्रोसेस चलती है ना उसका स्पीड बढ़ा लेती है। तो हमारे मधुबन रहने का ये जो चांस मिलना अपने पुरुषार्थ के लिए ऐसी एक लिफ्ट है। बस जरूरी है कि यहां जो हमने अनुभव किए हैं, यहां जो हमने अनुभव पाए हैं, वो अनुभवों को अपने कर्मों में, अपने व्यवहार में मान लाना है, केवल शेयर करने तक नहीं कि हाँ गए थे बहुत अच्छा लगा, वहां तो मजा आ गया, भट्टी में मजा आ गया, लेकिन मजा आया लेकिन हम अपने कर्मों में कितना उतारते हैं। क्योंकि दिनों दिन परिस्थिति तो ऐसी आ रही है कि सेवा की जो आवश्यकता है, खास करके हमारे स्थिति के द्वारा सेवा की, वो बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। हम कई जगह जाते हैं, यूथ सेवाओं के लिए जाते हैं, तो वहां भी देखा, अभी थोड़े समय पहले ज्ञानसरों में रिट्रीट भी हुआ, वहां भी पूरे भारत से यूथ आए थे। और ऐसे भी जहां भी जाते हैं ना, आजकल की यंग जनरेशन है, उनके पास स्किल बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, उनको लगता है कि मुझे कोई इंटरनल पावर देवे, कोई इंटरनल मेरे मुझे साथ देवे। सबको लगता है कि जैसे मैं अकेला हूं, कोई मेरी बात ही नहीं समझता है, कोई मेरी बात ही नहीं मानता है। तो ऐसी आत्माओं को हम शब्दों के द्वारा उनको साथ नहीं दे सकते, शब्दों के द्वारा उनको समझा भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ज्ञान और टैलेंट हमारे से ज्यादा है। बस उनको जो बाबा के साथ का सहारा हम आत्माओं के द्वारा मिलेगा, उसकी आवश्यकता है। क्योंकि हमको तो भगवान ने चुन लिया ना, हमको भगवान ने चुन लिया, सहारा दिया, शक्ति भी भर दिया, लेकिन उस शक्ति को, क्योंकि उन दूसरी आत्माओं को भगवान का परिचय तो नहीं है, बाबा का परिचय तो नहीं है, हम आत्माओं के द्वारा ही, वो हमारी स्थिति के द्वारा ही उनको भगवान की प्रत्यक्षता होगी। तो तो इसलिए हम अपने आप को इतना शक्तिशाली बनावे। शक्तिशाली बनाने का तरीका केवल ये नहीं है, कई होते हैं ना कि 108 बार लिख लो, 1000 एक बार लिख लो, उससे स्मृति स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन उस स्मृति को जब हम अपने कर्मों में लाएंगे तब वो शक्ति बन जाएगी, और जब वो शक्ति बनेगी तब हम दूसरों की सहायता करने के काबिल बन जाएंगे। कई बार होता है ना, अपने मोहल्ले में, गांव में, किसी के घर में कुछ घटना हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसे अचानक सडन डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो लोग बुलाते हैं, अरे आप लोग जाते हो ना ओम शांति में जाते हो, थोड़ा सा हमारे घर में आके बैठो। उनको अच्छा लगता है कि ये वहां जाते हैं ना, ये थोड़ा सा बैठेंगे ना, थोड़ा सा शांति का अनुभव होता है। लेकिन उस समय अगर हम खुद ही अशांत है, हम ही सोचने लगे अरे ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, तो शांति की जगह पे उनको और ही डिस्टर्ब मिलेगा, डिस्टर्बेंस मिलेगा, और हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारा भी बाबा से योग टूट जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि कंबाइंड स्वरूप, वहां भी जाओ कंबाइंड होके शिव शक्ति बन के जाओ, अपनी पूरी शक्तियों को चार्ज करके किसी से मिलने जाओ। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे, एक बार जगदीश भाई जी को यहाँ से कहीं किसी बड़े गेस्ट को मिलने के लिए जाना था, दादी ने बोला कि आप जल्दी जाओ और उन्हें तो निकल जाएंगे। तो भी जगदीश भाई खुद अपना अनुभव सुनाते, जैसे दादी जी ने कहा कि जाना है, लेकिन मैं सबसे पहले बाबा के सामने गया, तो सब लोग बाहर थोड़ा सा आवाज कर रहे थे कि लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा, वहां जाके वो निकल जाएंगे, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन भाई जी ने कहा कि नहीं, बाबा के सामने गया कि मैं जहां जा रहा हूं, जिससे भी मिलने जा रहा हूं, वो आपका प्लानिंग है, मतलब बाबा का प्लानिंग है, और बाबा का प्लानिंग है तो बाबा की शक्ति उसको मिलेगी, मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट बन के जा रहा हूं। तो इस तरह से बाबा से छुट्टी लेके, बाबा से शक्ति लेके जब वो मिलने गए तो उसने सामने से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ऊपर से वापस आने के लिए उनको गाड़ी भी दे दिया ना। तो इतना बाबा मदद करता है, लेकिन जब हम बाबा को साथ रखेंगे तो। और बाबा को साथ रखने का तरीका एक ही है कि हर पल, हर घड़ी, हर संकल्प में, हर कर्म में बाबा को साथ रखो। केवल सोचने समझने से नहीं, लेकिन हर प्रैक्टिकली साथ का फील करो, साथ का अनुभव करेंगे ना तो बाबा साथ रहेंगे। क्योंकि बाबा ने चुना है तो बाबा तो छोड़ेगा नहीं ना, बाबा का तो हाथ है ही। एक छोटी सी कहानी भी कहेंगे, इंसिडेंट को, कि कोई एक मेला होता है, मेले में अपने बाप का हाथ पकड़ के बच्चा चलता है, तो उसको हर चीज बड़ी सुंदर लगती है, कितने सुंदर गुब्बारे हैं, कितने सुंदर दुकान है, कितना सुंदर ये है, और वही बच्चे का हाथ अगर उसे छूट जाए, बिछड़ जाए, तो उसको जो सुंदर लग रही थी ना, वो हर चीज डरावनी लगती है, खराब लगती है। तो इतना फर्क पड़ता है साथ का। और हमारे साथ तो बाबा ने हाथ पकड़ा ही है, लेकिन हम कभी कभी नटखट बना करके हाथ छुड़वा देते हैं। अच्छा, हाथ छुड़वा देते हैं तो फिर और क्या, कोई भी परिस्थिति देखने का भी नजरिया होता है ना, कि किस तरीके से हम परिस्थिति को देखते हैं। एक कहानी थोड़े दिन पहले मैंने ऐसी पढ़ी कि दो शिष्य थे एक महाराज जी के, तो जब रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आम का पेड़ है, और आम के पेड़ को लकड़ी से एक बच्चा आम गिरा रहा है। तो तीनों वहां रुक गए, तो महाराज जी उस दोनों को पूछते हैं, आप लोगों ने क्या देखा? तो दोनों ने कहा कि आम गिरा रहा है बच्चा, लकड़ी से आम गिरा रहा है। तो महाराज जी उनको बोलते हैं कि नहीं, आप इसमें से क्या सोच सकते हो, क्या समझते हैं इस पर, इस दृश्य से? तो एक कहता है कि महाराज जी देखो ना, आम का पेड़ भी बिगड़ डंडा मारे फल नहीं देता है, इसलिए हमको अगर किसी से कुछ लेना है, कुछ काम करवाना है ना, तो थोड़ा सा डंडा मारना पड़ता है, रोब दिखाना पड़ता है। तो महाराज जी ने दूसरे को पूछा, अच्छा तुमको, तुमने क्या समझा? तो उसने कहा कि महाराज जी मैं थोड़ा सा अलग समझा। बोला क्या समझा? तो बोलता है कि महाराज जी मुझे लगता है कि देखो, आम का पेड़ इतना डंडा खाने के बाद भी मीठे फल दे रहा है। तो इतना सहन करने के बाद भी मीठा फल दे रहा है, इसलिए आम का पेड़ है। तो हम लोगों को कितना भी कष्ट झेलना पड़े, लेकिन हम दूसरों को सुख देने का प्रयास करें। सीन एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन देखने का नजरिया अपना अपना है। और जो नजरिया बनता है ना, वो बनता है अपनी खुद के स्थिति के आधार से। हम जैसी स्थिति है, हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा समझते हैं, वैसे हम दुनिया को देखते हैं। इसलिए वो ड्रामा का पहला चीज है कि ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, न्यायोचित है, पॉजिटिव है। ये कब समझेंगे? जब हमारी स्थिति वैसी होगी। हमारी स्थिति अगर अंदर से निगेटिव है तो हमें वो सारी परिस्थिति पूरी खिलाफ ही नजर आएगी, निगेटिव ही नजर आएगी। इसलिए जरूरी है कि हमारी स्वस्थिति को, और स्वस्थिति कैसे बनेगी, स्वस्थिति सबसे बेसिक लेसन क्या है बाबा ने बताया, ब्राह्मण बने ये परिवर्तन के लिए ना, तो सबसे पहला परिवर्तन कौन सा बोला? सबसे पहला परिवर्तन है शरीर का भान भूल आत्मा के भान में स्थित होना, है ना, सबसे पहला परिवर्तन। अगर वही परिवर्तन नहीं होगा ना, अगला परिवर्तन होगा ही नहीं। दूसरा परिवर्तन कौन सा? जब शरीर का भान भूल गए, आत्मिक भान में आ गए, तो उसके बाद दूसरा परिवर्तन होता है कौन सा? स्वभाव परिवर्तन। स्वभाव परिवर्तन तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हम अपने आप को आत्मा समझे। हम अपना आपको आत्मा समझे, इस भान से परे हो जाए, सामने वाले को भी आत्मा समझेंगे, तब स्वभाव परिवर्तन होगा। और जब स्वभाव परिवर्तन होगा तब संस्कार परिवर्तन। तो हमारे ब्राह्मण जीवन का अंतिम लक्ष्य भी यही है ना, संस्कार परिवर्तन। तो संस्कार परिवर्तन के लिए सबसे पहले तो हमारा देह का भान हमें भूलना पड़ेगा। बाबा ने हमको नॉलेज तो दे दिया है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन जब कभी कुछ बात हो जाती है, कभी किसी ने इंसल्ट कर दिया, कभी किसी ने इग्नोर कर दिया, फिर अंदर से जागृत हो जाता है वो, है ना। बाहर की दुनिया से तो हम भूल गए, उनको तो ज्ञान दे देते, अरे आप तो आत्मा है, शरीर छोड़ने के बाद भी दुख नहीं फील करो, लेकिन हमारा थोड़ा इंसल्ट हो जाता है तो, अरे मैं तो इतने समय से बाबा का हूं, इतने पुराना हूं, लेकिन इसने ऐसे कैसे कह दिया। तो ये भी किस कारण हुआ? ये भी देहभान आ गया ना, हम भान में अटक गए, देह के भान में अटक गए, इसलिए हमें वो अपमान फील हुआ, इसलिए हमें इग्नोरेंस फील हुआ, इसलिए इंसल्ट फील हुआ। इसलिए पहला परिवर्तन हमारी भान का, देह का भान छोड़ आत्मा का भान, उसके बाद में स्वभाव परिवर्तन। तो यहां से जाने के बाद, मधुबन से जाने के बाद, आपने शायद किया भी होगा भट्टी में, लेकिन सेवाधारी भाई बहने होते वो भी भट्टी में ही है, तो उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि मधुबन से जाने के बाद कम से कम एक ऐसा कड़ा स्वभाव हमारा जो केवल खुद को पता है, सामने वाले को बताने की भी जरूरत नहीं, खुद को पता है कि मेरा ये चीज है, ये थोड़ा सा चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा, सबको पता है। ऐसा एक पुराना स्वभाव हम बाबा के पास यहां छोड़ के जाएंगे। यहां से जाने के बाद आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले, आपके संपर्क वाले महसूस करे कि पांडव बन जाके है ना ये लोग, तो थोड़ा सा उस समय से चेंज इनमें दिखाई दे रहा है। जब ये चेंज परिवर्तन दिखाई देगा ना, तो फिर उनके स्वभाव में भी, उनके संस्कार में भी स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। तो उनको परिवर्तन करने के लिए हमें यहां से एक छोटी सी शुरुआत करनी पड़ेगी। वैसे बहुत सारे परिवर्तन हम सबने कर लिए है, बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दी है, जो मोटी मोटी चीजें सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन छोटे छोटे जिसको हम सहज भाव ने कहते ना, नहीं मेरा तो ये स्वभाव है, मैं तो ये सहन नहीं कर सकती, मैं तो ऐसी ही हूं, ऐसे हम थोड़ा सा सोचते, तो वो वाला चीज है ना, यहां से जाने के बाद सब बोले कि ये वो तो वैसी है नहीं, ये तो अभी चेंज हो गई है, ये तो वैसे चेंज हो गया है ना। ऐसे सामने वाले लोकप्रिय बनने का तरीका वही है ना, कि सामने से हमें रिप्लाई मिले, सामने से हमें आदर मिले, रिस्पेक्ट मिले, तो हम लोकप्रिय बनेंगे, तब प्रभु प्रिय बनेंगे, तब हम स्वयं प्रिय भी बनेंगे। तो यहां से जाने के बाद बाबा के घर से इतनी शक्ति भर के जाइए कि आपके लिए पूरी दुनिया सेवा के फील्ड के रूप में तैयार बैठी है ना। अभी अपने आप को सशक्त बना लिया, लेकिन अभी दुनिया के दुखों को निवारण करने के लिए बाबा आपको यहां से भेज रहे हैं। इसी भावना से, इसी संकल्प से हम जाएंगे तो सेवा भी होगी और हमारे स्वभाव परिवर्तन से, संस्कार परिवर्तन से सृष्टि का परिवर्तन भी होगा। ठीक है, बाकी आप सबसे मिलके अच्छा लगा। लास्ट के 5 मिनट हमारे पास है और 5 मिनट में हम कंबाइंड स्वरूप का थोड़ा अभ्यास करेंगे। करेंगे सभी कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करेंगे बहुत अच्छी तरह से और सहज तरीके से भी। खुद को बहुत ज्यादा कष्ट देने की जरूरत नहीं है लेकिन सहज तरीके से, क्योंकि बाबा ने हमें फूलों जैसा रखा है ना। कितना आराम से उठा लिया हमारी सारी चीजें, बाबा ने 1 सेकंड में माफ कर दी, आराम से उठा लिया। यहां भी आराम से बिठाया है ना, कोई स्कूल जिस स्कूल में सोफे पे बैठ के पढ़ाई होती है क्या, है ना। देखो बाबा की इतना बड़ा प्यार से बाबा रखता है तो सहजता से। चलो चाहे तालियां बजाओ उनके लिए। देखो ऐसे कितने अनुभव बाबा हरेक किसी को कराता है ना, सब सबके पास अनुभव है, सबके पास है, बस हमारी एक कमी है। बताओ कौन सी कमी है, हम लोग शेयर नहीं करते अपने अनुभव ना। दूसरों की कहानियां सुनने में तो मजा आती है लेकिन हमको बाबा ने जो अनुभव सुनाया ना, कराए है, वो हम दूसरों को शेयर करेंगे ना, उसमें से अपने आप सेवा हो जाएगी। देखो कितना अच्छा अनुभव है, उस ऐसे परिस्थिति में भी वो बाबा को याद रखा तो कंबाइंड हो गया ना। तो जहां बाबा कंबाइंड है तो वहां सेफ्टी भी है, और सेफ्टी नहीं केवल सेवा भी है। वही बाबा ही बचाता है ना, बाबा साथ ही है तो बाबा तो नुकसान होने नहीं देगा, है ना। जो ड्रामा के अंदर जो है पार्ट वो भी कल्याणकारी है और साथ में बाबा है, तो दोनों चीजें भी ऐसी है कि नुकसान नहीं होने देगा कभी भी। तो बाबा तो हमेशा साथ है और साथ देता ही है बाबा, बस हम साथ कितना लेते। जैसे कहा ना कि हाथ पकड़ के रखना हमारा फर्ज है, हाथ जब तक हाथ में है बाबा के तब तक सारी दुनिया खिलाफ हो जाए कुछ नहीं डर लगेगा, लेकिन जैसे हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए तो फिर सारा डर, सारा निगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। तो एक चीज आप यहां से और एक करके जाइएगा, अभी आप जाएंगे ना अपने अपने कमरों में तो बाबा के सामने बैठकर थोड़ा सा अपनी, जब से बाबा के बने ना तब से अपने जीवन को देखिए और उसमें एक, वैसे घटनाएं तो बहुत सारी होगी लेकिन कम से कम एक घटना जिसको आपको बाबा का प्रत्यक्ष मदद का अनुभव हुआ हो। हर किसी को हुआ है, परिस्थिति अलग अलग होगी, घटना अलग अलग होगी लेकिन हर किसी को हुआ है। ऐसी घटना आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि मेरे लाइफ में ऐसी ऐसी घटना हुई थी, उस समय एक्चुअल हेल्प, एक्चुअल मदद मुझे कैसे अनुभव हुई और बाबा ने कैसे हेल्प की। निमित्त कोई भी हो सकते है, किसके द्वारा भी मदद मिल सकती है लेकिन करने वाला तो बाबा है ना। तो वो चीज अगर आप नोट करके रखेंगे ना, आपको देखना कि वो इतना, अभी लिखते लिखते ही आपको बल अनुभव होगा, एकदम से एनर्जी अनुभव होगी। और जब भी कभी अपनी कुछ भी परिस्थिति आ जाए या कोई आपके सामने ऐसा जिज्ञासु आ जाए जिसको कुछ शेयर करने की आवश्यकता हो, बस आप वो चीज शेयर कर देंगे तो उसको उसमें से बल मिल जाएगा। क्योंकि हम डायरेक्ट परमात्मा की रचना है ना, हम ब्राह्मण आत्मा है, डायरेक्ट परमात्मा की रचना है, इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन होता है उसमें परमात्मा की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और डायरेक्ट बाबा की शक्ति उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए उस शक्ति को हम बार बार रिक्रिएट करते रहेंगे ना, री एनर्जाइज करते रहेंगे तो उस शक्ति हमेशा हमें काम आएगी। ठीक है, अभी हम 5 मिनट थोड़ा सा अनुभव करेंगे कंबाइंड स्वरूप का।
प्रभु का ध्यान